हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत प्रथम स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 18। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय। चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ राशि में भागवत महापुराण की जय हो। पहला स्कंद छठा अध्याय श्लोक संख्या 18। कृपा करके मेरे साथ पढ़िए। नारद मुनि कहते हैं, रूपं भगवतो यत्तं मनः कांतं शुचापहं, अपश्यन् सहसोतस्थे वैक्लव्यातुर्मना इव। रूपं भगवतो यत्तं मनः कांतं शुचापहं, अपश्यन् सहसोतस्थे वैक्लव्यातुर्मना इव। रूपं भगवतो यत्तं मनः कांतं शुचापहं, अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव। रूपं भगवतो यत्तं मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव रूपं भगवतो यत्तन् मनः कान्तं शुचापहम् अपश्यन् सहसोत्तस्थे वैक्लव्यादुर्मना इव शब्दकात् रूपं भगवतो यत्तन् रूपम् अर्थात् रूप भगवतो भगवान् का यत् जैसा है तत्वः मनः कान्तं शुचापहम् मनः यानी मन की कान्तं इच्छानुसार शुचापहम् समस्त विषमता को दूर करते हुए अपश्यन् सहसोत्तस्थे अपश्यन् यानी बिना देखे सहसो अचानक उत्तस्थे खड़ा हो गया वैक्लव्यादुर्मना इव वैक्लव्य अर्थात विकल हो गया और दुर्मना यानी इष्ट को खोकर इव इस प्रकार अनुवाद भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ जैसा कि प्रायः अपने इष्ट के खो जाने पर होता है तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय हो श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि नारद मुनि के अनुभव नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है हम जीवन भर इस भौतिक जगत में भिन्न रूप देखते रहते हैं लेकिन इनमें से किसी एक से भी ना तो मन की तुष्टि होती है ना उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है भगवान के दिव्य रूप की यही विशेषताएं हैं और जिसने उसे एक बार भी देख लिया है वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता भगवान रूप विहीन है या निराकार है इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता है और वे किसी भौतिक पुरुष के समान नहीं होते हैं हम सभी आध्यात्मिक प्राणियों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं और अन्य किसी भौतिक रूप से संतुष्ट नहीं हो पाते नारद मुनि को इसकी झांकी मिली थी लेकिन उसे दोबारा ना देखकर वे विकल हो उठे और ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं वह नारद मुनि को मिल चुका था अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित रूप से उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था श्री प्रभुपाद की जय हो मूकं कुरु तु वाचालं पंगुं लंघयति किरं यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुनीनतारणं जैसा कि हमने पढ़ा कि श्लोक नंबर 16 में नारद मुनि ने बताया कि ध्यायतश्चरणां भोजं भावनेजित चेतसा औत्कंठ्या शुकलाक्षस्य विद्यासीन में शनाय हरि, कि जैसे ही अपने मन को दिव्य प्रेम में लगाकर भगवान के चरण कमलों पर ध्यान करने लगा कि मेरे नेत्रों से आंसू बहने लगे और भगवान श्री कृष्ण मेरे हृदय कमल पर तुरंत ही हृदय आसीन शनय हरि, कि मेरे हृदय के ऊपर भगवान प्रकट हो गए, विराजमान हो गए और मेरे नेत्रों से आंसू निकल रहे थे, और क्योंकि मैं भाव के उस पर स्टेज पर पहुंच गया था और मैं क्या कर रहा था, ध्यायतश्चरणां भोजं, भगवान के चरण कमलों का ध्यान कर रहा था, है ना। भगवान के चरण कमलों में, चरण कमलों को अपने मन में स्मरण कर रहा था, यानी कि यहाँ पर भी जैसे अब उनको, उन्होंने फिर क्या हुआ कि जब वो ध्यान कर रहे थे तो हृदयासीन में शनय हरि भगवान उनके हृदय पर प्रकट हुए, और जब प्रकट हुए तो उन्होंने कल बताया हमें कि भगवान का वो दर्शन इतना अद्भुत था कि उसका वर्णन करना असंभव है, लेकिन उस समय में इतना आनंद विभोर हो गया था, इतना आनंद के अगार सागर में मग्न हो गया था, जिसके कारण मेरे नेत्रों से अश्रु भी बह रहे थे और मेरी अंग प्रत्यंग में पुलक हो रहा था, और मैं अपने आप को और भगवान को भी ना देख सका। यानी उन्होंने कहा, प्रेमातिभिरने भिन्ना पुलकांगोति निर्वृता आनंद संप्लवी लीनो ना पश्यम उभयम मने, कि मुनि में इतना, मतलब इस भौतिक नेत्र और भौतिकता से बिल्कुल परे था वो दृश्य, कोई साधारण लोग को जिस तरह से हम देखते हैं उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मैं उनका अनुभव कर रहा था, लेकिन मैं उनको साक्षात देख नहीं पा रहा था, मेरी इस दृष्टि से वो नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी मेरे हृदय पर वो आसीन थे, मैं उनको महसूस कर रहा था और वो इतना अगाढ़ आनंद मुझे पुलक हो रहा था, मेरे रोमांच जो है वो रोम खड़े हो रहे थे, आनंद के सागर में ऐसा लग रहा था मैं मग्न हो गया हूँ, इतना अगार आनंद उनको प्राप्त हुआ। और आज सहसा क्या हो गया, रूपम भगवतो यत्तन मनः कांतम शुचापहम, अर्थात भगवान का जो इतना सुंदर, जैसा कि उन्होंने अपने मन में उसको कांतम का मतलब होता है मेरी इच्छा के अनुसार, जैसे मैंने उन्होंने बताया था मुझे महापुरुषों ने, मैंने एक रूप अपने हृदय के अंदर धारण किया था और वो प्रकट हो गया था मेरे सामने, शुचापहम समस्त विषमता को दूर कर दिया, जब हृदय के अंदर भगवान का दर्शन होने लगा उन्हें, तो फिर समस्त कष्ट, समस्त अशांति, समस्त थकान, समस्त जो भी टेंशन डिप्रेशन जो कुछ भी है वो सब समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि भगवान का स्वरूप, भगवान का साक्षात्कार जो जिसको हो जाता है, तब उस समय आत्मा तृप्त हो जाती है। क्योंकि वास्तव में अब हमारा क्या है कि हम अपने आप को देहात्म बुद्धि में रहते हैं, और जैसे श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब जीव इस संसार में आता है तो फिर वो क्या करता है कि वो भौतिक वस्तुओं से, भौतिक रूपों से अपने आप को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। वो सोचता है कि मैं इसको देखूंगा तो संतुष्ट हो जाऊंगा, हर वक्त देखता रहता है, लेकिन उसमें से एक रूप, जो भी भौतिक रूप है जितने भी, उसमें से कोई भी रूप ना तो हमें संतुष्ट कर सकता है और ना ही हमारे हृदय के अंदर जो अशांति है उसको समाप्त कर सकता है। शांति कहीं पर प्राप्त नहीं हो सकती, भौतिक जगत का कोई भी दृष्टा हमें संतुष्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब कि भगवान जो है, केवल आत्मा केवल भगवान को निहारना चाहती है, जब तक आत्मा को भगवान का साक्षात्कार नहीं हो जाता तब तक उसकी संतुष्टि संभव नहीं है। इससे ये पता चलता है, श्री प्रभुपाद जी पहली लाइन में बता रहे हैं कि नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप भी नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न है। ऐसा नहीं है कि भगवान निरूप है, भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, भगवान का स्वरूप है लेकिन हमारी भौतिक चक्षुओं के द्वारा देखे जाने वाला नहीं है, वो बिल्कुल अभिन्न, इससे मतलब भिन्न है। और वो इतना दिव्य है कि उसके लिए ये भौतिक नेत्र काफी नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी बताते हैं, प्रेमंजना चरिता भक्ति विलोचनेना संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, कि भगवान की यदि दर्शन करने हैं तो उसके लिए इन नेत्रों की आवश्यकता नहीं है, जो भौतिक नेत्र हैं उनसे भगवान दिखेंगे नहीं आपको। भगवान के दर्शन तो हृदय के नेत्रों पर जब प्रेम का अंजन लगाओगे तभी आपको दिखेंगे। तो फिर यहाँ पर यह प्रश्न होता है, क्या यह विग्रह जिसको हम दर्शन करते हैं वो भगवान नहीं है? हम उनको भगवान समझते हैं श्री प्रभुपाद से। तो किसी ने पूछा कि क्या ये विग्रह जो है, क्या आपने कभी भगवान के दर्शन किए? श्री प्रभुपाद ने बोला, हाँ मैं रोज भगवान के दर्शन करता हूँ, अभी भी भगवान के दर्शन कर रहा हूँ, देखो सामने श्याम सुंदर मुस्कुरा रहे हैं। तो बोला, नहीं मैं ये बोल रहा हूँ कि क्या आपने सच्ची में कभी भगवान के दर्शन किए? तो बोला, आप कहना क्या चाहते हो, ये सच्ची वाले भगवान नहीं है? ये सच्ची झूठी का क्या मतलब होता है? ये सच्ची भगवान है, हम इनकी सेवा करते हैं, इनको भोग लगाते हैं, इनसे प्रेम करते हैं। तो बोला, अच्छा ये भगवान तो सही है, लेकिन मतलब श्रीला प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि वास्तव में विग्रह में और साक्षात भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो फिर यहाँ पर यह प्रश्न, यहाँ पर ये बात आती है कि ठीक है, विग्रह को तो हम इन भौतिक नेत्रों से भी देख सकते हैं, है ना? तो फिर कैसे हुआ कि भगवान को इन भौतिक नेत्रों से अनुभव नहीं किया जा सकता? यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान का रूप इन भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न है। वास्तव में भक्तों, भले ही भगवान का रूप और भगवान का ये विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन ये जो स्वरूप है वो ये तो हमारे भगवान के साथ पुनः संबंध जोड़ने का एक जरिया है, क्योंकि हम वास्तव में अभी भौतिक इंद्रियों से युक्त हैं, हमारी इंद्रियां भौतिक हैं। तो अब भौतिक इंद्रियां जो हैं, जब तक आध्यात्मिक तक नहीं पहुंचेंगी तब तक तो आध्यात्म में भगवान के दर्शन नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए ये जो स्वरूप है भगवान का, विग्रह स्वरूप है, उसके साथ हम प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, जैसे नारद पंचरात्र में जिस तरह से डीटी वर्शिप बताया और हमारे आचार्यकरण जिस तरह से बताते उस तरह से करते, क्योंकि वास्तव में हमें यही करना है, यही हमारा रियल स्वरूप है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान के, भगवान में और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी तो ये विग्रह अभी भौतिक वस्तुओं से बनी हुई है ना, लेकिन इसी विग्रह के द्वारा हम अपने सुप्त प्रेम को जागृत करेंगे और फिर वही वास्तविक अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करेंगे। अपने दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके उसी विग्रह के दिव्य स्वरूप को, अब ये विग्रह का भौतिक स्वरूप है हमारे सामने, लेकिन उसी विग्रह के दिव्य स्वरूप को अपने दिव्य स्वरूप के साथ सेवा करेंगे। ये है वास्तविकता, ये है मुक्ति। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि अगर कोई बोलता है कि भगवान रूप विहीन है या निराकार है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि भगवान का कोई स्वरूप है नहीं। इसका क्या मतलब है कि भगवान का कोई भौतिक रूप नहीं होता है, किसी भी भौतिक पुरुष के समान भगवान नहीं होते हैं। भगवान दिव्य हैं और केवल दिव्य स्टेज पर रहते हैं, और केवल जब हम आध्यात्मिक में स्थित हो जाते हैं तभी हम भगवान का दर्शन करेंगे। जैसा कि नारद मुनि का भाव, मतलब वो अभी ध्यान लगा रहे थे, और ये कौन से तरीके से, जैसे भगवान श्री कृष्ण छठे अध्याय में योग पद्धति बताते हैं, हृदय के अंदर योगी जन अपने भगवान के दर्शन करते हैं, उसके विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है। तो उन्होंने जब दर्शन किए, कहाँ से शुरू किया उन्होंने? जिसे हमने पढ़ा ध्यायतः शरणम भोजम, चरण से भगवान के चरण कमल से ध्यान करना शुरू किया और अभी हम पढ़ेंगे थर्ड स्कंद में। उसमें बताएंगे कि योगीजन जो है वो भगवान के हंसते मुस्कुराते हुए मुख की ओर अपना आकर्षण केंद्रित करते हैं। तो अब जब नारद मुनि ने दर्शन करा उनको बहुत आनंद भी आ रहा था, अचानक से क्या हुआ, अपश्यन सहसोत्तस्थे, यानी कि सहसा मतलब अचानक से, अभी वो देख रहे थे, अभी तक अपने आप को संभाल नहीं पा रहे थे, पुलक हो रहा था, नेत्रों से आंसू बह रहे थे, आनंद विभोर हो रहे थे, परंतु सहसा उतस्थे खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? अपश्यन, अपश्यन का मतलब होता है, पश्यन का मतलब होता है देखना, अपश्यन का मतलब अभी अचानक से गायब हो गए, हृदय के अंदर भगवान प्रकट हुए और अपश्यन सहसोत्तस्थे और अचानक से गायब हो गए, तो वो खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? वैक्लव्या का मतलब होता है व्याकुल हो गए, क्योंकि जिस भगवान को देखकर उनको इतना संतोष प्राप्त हो रहा था वो अचानक से गायब हो गए थे, तो वो बहुत व्याकुल हो गए, छटपटाने लगे और दुर्मना इव, जिस प्रकार से अगर श्री बाबा जी बोलते जैसा कि प्रायः अपने इष्ट के खो जाने पर होता है, यदि के और वैसे भी इस संसार में भी बहुत बहुत जन्मों से, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने हमें तात्पर्य में बताया कि क्योंकि हम आध्यात्मिक आत्मा हैं और जब से हम संसार में आए हैं हम केवल एक ही चीज की खोज कर रहे हैं, जन्म जन्मांतर से भगवान के उसी स्वरूप को खोज रहे हैं और अन्यों किसी भौतिक रूप से संतुष्ट भी नहीं हो रहे। अब नारद मुनि को इसकी झांकी मिली थी, वो उनको वह उनकी जो खोज थी वो संपूर्ण हो गई थी, लेकिन उस झांकी के प्राप्त होने के बाद अचानक से दोबारा जब अपश्यन सहसोत्तस्थे वो अचानक से वो गायब हो गई दोबारा से, तो फिर वो व्याकुल हो गए और ढूंढने लगे, खड़े हो गए, इधर उधर देख रहे थे कि वो कहाँ हो गए। अब क्योंकि पहले वो अपने आनंद को अपने अंदर समा नहीं पा रहे थे, लेकिन अब तो अपनी व्याकुलता को, अपनी व्यग्रता को वो समा नहीं पा रहे थे हृदय के अंदर, अब तो इतना व्याकुल हो गए। वास्तव में भक्तों, जब तक भगवान का अनुभव नहीं होता है तब तक हमें पता नहीं होता है कि वो कितनी संतुष्टि है, लेकिन जब एक बार भगवान का साक्षात्कार हो गया उसे कितना आनंद का अनुभव, और इत अपार आनंद के बाद अचानक से भगवान गायब हो जाए, उनकी क्या हालत हो रही हो उसका वर्णन करना संभव नहीं है। इसे बताया जैसे एक दफा प्रभु में बता रहे थे क्लास में कि ऐसा होता है भक्तों के साथ कि शुरू शुरू में जब भक्त आता है नया नया भक्ति में, तो भगवान उसे दिव्य आनंद का एक जरा सा बूंद का टेस्ट, बूंद जो है छोटी सी अमृत सिंधु, भक्ति का जो अमृत सिंधु है, महासागर है, उसकी एक छोटी सी बूंद चखा देते बस, और फिर उसमें उसको इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है उस बूंद के टेस्ट में कि वो ना उस आनंद को महसूस करके समझता है कि संसार का कोई दुख फिर दुख नहीं लगता। और इस आनंद के विषय में भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता के छठे अध्याय के श्लोक नंबर 21 में अत्यंत ही सुंदर रीति से समझाते हैं। भगवान कहते हैं, सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिर्ग्राहम अतीन्द्रियम् वेति यत्र न चैवायम् स्थितश्चलति तत्वतः। कि सुखम आत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिर्ग्राहम, ये इतना आनंद होता, आत्यंतिक सुख होता है, सुख की पराकाष्ठा होता है, और वो इंद्रियों के द्वारा ग्रहण नहीं किया जाता बल्कि बुद्धिर्ग्राह्यम अतीन्द्रिय, इंद्रियों से बिल्कुल आगे है और बुद्धि के द्वारा उसको ग्रहण किया जाता है। वेत यत्र न चैवायम स्थितश्चलति तत्व, फिर जब वो सुख प्राप्त हो जाता है, आनंद वो जब अगाध आनंद, अपार आनंद प्राप्त हो जाता है भगवान के दर्शन का। जब आनंद प्राप्त हो जाता है तो फिर व्यक्ति जो है वो कभी भी अपने पद से हटता नहीं है, विचलित नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि भौतिक कोई भी वस्तु उसे उतना आनंद प्रदान नहीं कर सकती है। यम लद्दा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। एक बार वो आनंद भगवान की भक्ति का, भगवान के प्रेम का, भगवान के दर्शन का यदि किसी को प्राप्त हो जाए, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, जब एक बार प्राप्त हो जाएगा तो संसार का कोई भी सुख, संसार का छोड़ के त्रिलोकी का भी अगर उसे सुख मिल जाए, स्वर्ग का राजा भी बना दिया जाए या फिर त्रिलोकी का नाथ भी बना दिया जाए, वो फिर भी वो क्या बोलता है, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, कि इस आनंद से बढ़कर और कोई सुख हो ही नहीं सकता। भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाए, भगवान का दर्शन हो जाए, तो फिर इसके अतिरिक्त तो और जीव को कुछ नहीं चाहिए। जब ध्रुव महाराज तपस्या करने के लिए बैठे और भगवान जब आए, उनके दर्शन, उनसे पूछा ध्रुव क्या चाहिए, तो बोला कि आपका दर्शन हो गया, अब और भी कुछ चाहने के लिए बाकी बचा कृष्ण? आपका दर्शन, भगवान कहते ध्रुव भक्त भगवान को कहते हैं, स्वामी कृतार्थ हम मरम नवान से, मैं कृतार्थ हो गया, आपके दर्शन हो गए, अब और क्या रह गया मांगने के लिए, अब आप मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कितना मूर्ख था कि मैं हीरे को छोड़कर कांच के टुकड़े को मांग रहा था, परंतु अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए, आपका दर्शन मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। और इसलिए कहते हैं, इसके साथ साथ क्या होता है, 22 श्लोक 6.22 में भगवान बताते हैं, यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गृणापि विचाल्यते, कि जब ऐसा सुख प्राप्त हो जाता है, भगवान का सानिध्य प्राप्त हो जाता है, तब यस्मिन् स्थितो न दुःखेन, उस सुख को प्राप्त करके कोई भी दुख गृणा भी न विचाल्यते, कोई भी दुख जैसा लगता ही नहीं है, क्योंकि सुख इतना ज्यादा होता है कि दुख जो है वो महसूस ही नहीं होता है। भौतिक दुख जिसको आज हम इतना ज्यादा वैल्यू दे रहे हैं, थोड़ी थोड़ी जो चिंताएं हैं, टेंशन हैं, भौतिक परेशानियां या भौतिक रोग को हम कितना सोच रहे हैं कि देखो हम कितने दुखी हैं, कोई गरीब है, कोई मतलब सही फिजिकली फाइनेंशियली जो फिर सही नहीं सेट नहीं, तो कितना सोचता है कि मेरे पास कितने दुख है, मैं कितना दुख हूँ। कोई कोई लोग बोलेंगे दुनिया में कितना दुख है, मेरा दुख तो और भी कम है, लेकिन कोई कोई बोलेगा मुझसे ज्यादा दुखी तो कोई हो ही नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर भगवान बताते, यम लब्ध्वा चा परम लाभ मन्य देनाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गृणापि विचाल्यते, इससे ज्यादा सब पराकाष्ठा क्या है सुख की, कि जो सुख आपको प्राप्त हो जाए उसके बाद आपको कोई भी भौतिक सुख ही ना लगे, उससे बढ़कर को तो क्या, उसके बराबरी किसी सुख की लगे नहीं, और उससे भी बड़ी बात कि वो सुख जब आपको प्राप्त हो जाए तो फिर चाहे कितना भी दुख आपको दिया जाए वो दुख आपको दुखी ही ना लगे। जैसे हम जानते हैं कि भक्त प्रहलाद को कितने सारे कष्ट दिए गए, लेकिन जब भगवान का सानिध्य उन्हें प्राप्त था, उनको सब कुछ जो दुखमय स्थिति थी वो भी उनको आनंद देने वाली लगी, क्योंकि कुंती महारानी भगवान को कहती है, हे कृष्ण मुझे और दुख दो, और भी दुख दो, क्योंकि दुख में तुम मेरे बहुत करीब आ जाते हो, और जब तुम मेरे करीब आते हो तो मुझे दुख भी सुख लगने लगता है, और जब सुख आता है तो आप बहुत दूर चले जाते हो, फिर उस सुख को मैं सुख नहीं समझती बल्कि सबसे बड़ा दुख समझती हूँ। वास्तव में भक्तों, भगवान जब जिस समय हमारे करीब होते हैं, भगवान की प्राप्ति सबसे बड़ा सुख है, तो वह प्राप्ति नारद मुनि को हो गई। लेकिन अचानक से अपश्यन सहसोत्तस्ते, अचानक से वो गायब हो गया दर्शन भगवान का, अपश्यन बगैर देख नहीं पा रहे थे, और सहसो उपस्थे वो ऊपर खड़े हो गए, यानी कि बैठे हुए नहीं था ध्यान पे, उत्तस्थे का मतलब होता है खड़े हो गए, और वैकुल्या दुर्मना इव, फिर इतना छटपटाने लगे, व्याकुल हो गए कि अब क्या करूं मैं, कैसे वो वाला दर्शन वापस से प्राप्त करूं। यही स्थिति थी परीक्षित महाराज की। हम सब जानते हैं कि जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ पर तीर मारा था और ब्रह्मास्त्र जब चलाया था, तो अंदर उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज विराजमान थे। परीक्षित महाराज को बचाने के लिए भगवान श्री कृष्ण उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर लिया और फिर वहां पर अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा की। और उसके बाद जब परीक्षित महाराज का जन्म हुआ तो वो पूरा जहाँ पैदा हुए थे वो पूरा इधर उधर देख रहे थे, जिसको बहुत गौर गौर से देख रहे थे, बहुत ध्यान से देख रहे थे, लेकिन संतुष्टि नहीं आ रही थी। मतलब उनको दिल नहीं कर रहा था किसी की ओर भी देखने का, वो खोज रहे थे। परीक्षित, परीक्षित का मतलब क्या होता है जानते हो? मतलब एग्जामिनर, जो परीक्षा लेने वाले होते ना, जो यानी कि वो हर किसी को देख रहा था बहुत गौर से, और वो उस सुंदर मुखारविंद को तलाश कर रहा था, उसकी खोज कर रहा था, जिनका दर्शन उन्हें गर्भ अवस्था में हुआ था। एक बार जो भगवान के मुखारविंद का दर्शन कर लेता है, फिर उसे कोई भी भौतिक वस्तु अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती, फिर उसे केवल भगवान का दर्शन ही संतुष्ट कर सकता है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जीव जिस भगवान के दर्शन के लिए जन्म जन्मांतर से तड़प रहा था, जब नारद मुनि को मिल चुका था, अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित रूप से उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। डेफिनेटली उनको बहुत ज्यादा दुख हो रहा था। अब देखते हैं कि क्या पुनः भगवान उनको अपना वह सुंदर मुख कमल का दर्शन दिखाते हैं या क्या होता है। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करिएगा कि मैं अपनी सेवा अच्छे से कर सकूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।